You are listening to Radio Sai Global Harmony. Please visit our website radiosai.org to listen to our free internet streaming service. On this website, you can access audio streams. The first three are Asia Stream, Afri Stream and Ameri Stream, which offer you programs in the languages common to these geographic regions. The other two streams are Bhajan Stream and Discourse Stream. Click on the Bhajan Stream to listen to a Sai Bhajan at any time of the day. Similarly, to listen to the divine voice of Bhagavan Sri Satya Sai Baba 24 hours a day, 7 days a week, please log on to the Discourse Stream. Just log on to radiosai.org and experience the divine love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. For any inquiries, please email us at listener@radiosai.org.
Dear listeners, Sai Ram greetings, a very good morning and a warm welcome to today's Thursday Live. This is Raghu from Team Radio Sai and I welcome you all to the segment Service, Love in Action, in which we bring you accounts of Swami's love and our love for Swami translating into service to humanity. And as always, I am accompanied by Brother Sunil, our audio engineer, who will be helping me in playing the files from the audio console. This live broadcast is coming to you from Prashant Nilayam, the spiritual capital of the entire universe. Well, at the very outset, let us all collectively offer our most humble pranams at the lotus feet of the voice and the listener, the heart and soul of Radio Sai, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. So, dear listeners, today is 12th of September. And the digital clock in our studio shows that the time right now is 7 minutes past 11 o'clock. Well, the weather here at the ashram is very cool and pleasant, and it has been raining heavily in the last couple of days. There is also a festive mood in the ashram because 2 days back was the festival of Ganesh Chaturthi, and yesterday was the immersion of all the Ganesha idol done by Swami students here at Prashant Nilayam. Well, the joy of glorifying Lord Ganesha, the remover of all obstacles and sorrow is always special. So in today's segment of Service Love in Action, I'll be featuring two unique and wonderful Seva projects. Well, the first one is the seed supply facilitating project to the farmers of Tamil Nadu by the Sri Satya Sai Seva Organization of the South Indian State, Tamil Nadu. And the second story is the life-changing story of Riksha Pullers from New Delhi, India. So first let's talk about the seed story for the farmers of Tamil Nadu. Well, nearly about 60% of India's 1.2 billion population depends directly or indirectly upon agriculture. And the agriculture sector in turn is at the mercy of a number of variables, such as timely and adequate monsoons, failure of which results either in droughts or floods, each situation destroying the farmer community. One of the other biggest challenges facing farmers everywhere is the rising cost of the pure and high-yielding seeds. The situation in India is mired in confusion due to lack of information dissemination, and farmers don't know how to access the help that the government can offer. Huge burdens of debt, a sense of helplessness at nature's whim and illiteracy has led to growing farmer suicides across the globe. As their survival in the changing economy becomes difficult, farmer suicides seem to be an easy solution for these stressful farmers. No wonder the 2011 census data reveals a shrinking farmer population. Farmer suicides, however, did not come into limelight for a long time. According to the data available, in India alone, there have been about 17,500 farmer suicides between the years 2002 and 2006, just in 4 years. The Maharashtra state saw around 4,453 farmer suicides only in the year 2006. Well, sadly, the state is also the home to India's financial capital, Mumbai. According to government data, a number of farmer suicides have occurred in the states of Punjab, Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Well, the situation in India is bleak and generally underreported. India's mainstream media's focus on celebrities, cricket, scams, scandals, and has pushed the focus on the sad and pressing issue of farmer suicides to the back burner. Well, isn't it a pity to know that the innocent lives of such valuable members of the community, or farmers, who produce food for the nation, are lost in this manner due to a huge burden of debt? But nothing can escape the cosmic eye of God, the infinite reservoir of compassion. Bhagwan Sri Satya Sai Baba has always stressed on the need to empower the Indian farmers. Bhagwan Baba has always demonstrated a great concern for this section of the society who work hard and struggle due to lack of infrastructure. They are the ones who produce food for others, living only very little for themselves. Well, dear listeners, Mr. K. Sai Prasad, who is a retired Joint Director of Agriculture, Tamil Nadu Government, has been inspired by Bhagwan to be his instrument in order to reach out to these members of the society, that is, the poor farmers. His professional qualifications gave him the edge, and a letter sent by him through a student to Swami seeking his guidance, well, could not be unnoticed, even though the student missed giving the letter to Swami. Baba called the student and asked for the letter and blessed him. Mr. K. Sai Prasad is the district president of the Sri Satya Sai Seva organization for Chennai North for past 7 years and convener for past 10 years. He is currently the state coordinator of Sri Satya Sai Seva organization for agriculture and rural development, Tamil Nadu. So as part of rural development, they take up many eye checkup camps every month. It's organized, and more than 9,000 cataract surgeries have been performed to date. This has been happening for past 15 years in the state of Tamil Nadu, and patients who come are mostly poor slum dwellers. And then they are also referred to Shankar Netralaya. Well, a huge step towards agriculture development is seminars being organized for farmers, which give them an exposure to improved crop technology, more efficient farming practices, education about government subsidies available to them, and usage of less water. Providing for good quality, high yielding seeds to these farmers at a concession rate results in big savings and is a huge help, considering that 90% is private supply and only 10% is government supply. The exposure to these seminars have resulted in broadening of vision for the farmers, who now want to be self-sufficient and self-dependent, and hence they are being encouraged to have their own seed farms in order to produce certified seeds to provide for themselves as well as to their families. This will result in timely availability of pure high-yielding seeds for the farmers. So, dear listeners, a couple of months back, Radio Sai's Karuna Munshi had recorded a conversation with Mr. K. Sai Prasad and Mr. A. Vijay Kumar, two members of the Sri Satya Sai Seva organization, Tamil Nadu, who are very actively involved in this seed supply project. So, to begin the segment with, let's listen to that recorded conversation right now.
K. Sai Prasad, sir, and A. Vijay Kumar, sir. Sai Ram to both of you, and a very warm welcome to Radio Sai.
Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram.
Now, the work that you're doing is so interesting, and we've been tracking this story for a while now. Can you tell us, what is seed supply facilitating and farmer education all about?
Sai Ram, I would like to recall Bhagawan's Sri Satya Sai Village Integrated Program, started in 2007, and where Bhagawan is more concerned about farmers, saying that farmers are always working hard in hot sun and rain and produce grains for others, and they themselves eat porridge and leftover food of yesterday. So, as in a Joint Director of Agriculture, as well as a member for so many years, since 1985, I thought I must do something to the farming community, and so we have started this seed supply facilitating meeting, as well as this farmers seminar. The farmers seminar are mainly intended to import crop technology and discuss various field problems and thereby give technical solutions for them.
When did this start? It's a very nascent project and suddenly it's picked up so much of momentum. So would you like to tell our listeners when it began and how?
Yes, I am. As a district president of Chennai Metro North, I have there for about 7 years. And during 2008 and 2009, under Sri Satya Sai Village Integrated Program, the villagers are, I found that only two crops are grown, and one crop is paddy, and another crop is watermelon. Paddy is just, it's only a dry sowing crop there. They are not having any irrigation facilities. Rain fed conditions, they were growing a bold variety by name ADT 39. That is Aadudurai, what we call in Tamil. There is a place Aadudurai. The variety was released there, and Aadudurai 39 they were growing. And I thought, initially they have to go to a distance of 30 kilometers to bring the seed, genetically pure variety, high yielding variety. You know, it will give 20% extra yield than the local varieties. All that they have to go, walk or go by bullock carts 30 kilometer distance for a agricultural extension center, and from there they have to buy, high yielding varieties. I thought to do something for the villagers, so I take the request of the farmers to government of Tamil Nadu, and the government of Tamil Nadu kind enough to allot a nearby extension center, even though it is not part of their jurisdiction, and they have allotted initially 1.5 tons, and for the past 5 years, we have supplied 20 metric tons of paddy seed ADT 39 to 300 farmers at 50% rate. The market rate is 39, and they got it nearly to 17 to 19, and they got overall benefit of 1.5 lakh rupees benefit. And the whole thing is, one more thing I want to inform about the Bhagavan's grace on them. The day they receive the seeds, next day they will receive rains. That is how Bhagavan is showering his grace on all the villages, Sairam. And the second crop which they were growing is watermelon. That watermelon crop is only 2 months crop, and initially they were using local varieties, and I saw the local varieties will have abnormal shape and as well as with low yield. When it has having abnormal shape, it was very difficult for them to market in the produce. And they were all just thinking what to do. At that time, Goswami gave me to do something for them. Initially, I approached one private seed producer, Sunguru product. And that Sunguru, initially they were having two varieties. Out of two varieties, 1 year they have planted, only one variety, Sunguru 786 is best suited to them. And they got many of them, and got heavy yield and more money as economic returns. And one of the Gangan, one farmer got in 2 acres of land for in 2 months period 1 lakh rupees.
Wow, what a change in their economic status.
Yes.
Immediate improvement.
Yep.
Now, when did you begin this? When was the first time when you started this in Metro North?
Metro North, it was started in the year of 2008, the watermelon story. The first year we have supplied 15 kg. Second year it grows to 20 or 30. Third year 40. Now nearly 150 kgs we have supplied to the 5 villages. And nearly the surrounding 5 villages also started coming to our fold. And the rest of the 5 villages of our adapted village, I mean adjacent villages, they came, they want to have Sai seed.
Because Sai seed gives the best yield.
And we chant Rudram during our field visits. During supply, we chant Rudram and everybody is happy. And the biggest transformation is one lorry load of watermelon is being sent to Prashanthi Nilayam every year in the month of March for supply of Bhagavan's property, students and ashram people. And one more thing I want to enlighten, and that particular farmer who is having the idea of sending fruits to the ashram is a secret. He just told me once that Swami always keep me abundant yield and abundant money. You see how Swami works in each and every heart and does his work. As he proved that we are all his instruments, and the watermelon project is now becoming throughout the state. We are going, Sairam.
So you began out of goodwill because you had a background of working in the Department of Agriculture. You were a joint director and you wanted to help these farmers who were in difficulty. Then suddenly the whole process got formalized and now you're educating farmers in different districts of Tamil Nadu. What are some of the things that you teach?
Sairam, generally farmers are very shy. They do not get mixed with each other. And the person who is growing a paddy crop, what type of package of practices he will adapt, what type of fertilizers he will apply, the things which he will not even reveal to the next farmer. That is the state of affairs. And one more thing, our spirituality comes here. As I already told the watermelon farmer, who wants to, place at one lorry load of watermelon 7 metric tons at his feet, Swami is taking care of, even including agriculture, even rains. And so some pest and diseases comes, how it comes? It's only the consequence of divine love, consequence of karma. They have to bear it. And many of the farmers, now they are happy that they are getting genetically pure, high-yielding variety seeds, both watermelon and paddy. With reference to conferences, that is seed facilitating meetings as well as the farmer seminars was formulated because I thought that the farmer should be educated on part of government subsidy concession given by them, and these people should get it on SVIP. Farmer group approach. Bhagavan says sometimes the unity will have purity, purity and divinity. And because of unity, when we focus a farmer group of Sri Satya Sai Baba and all the routes are open and everybody is coming and doing some good work for them.
So when you approach as a group to the providers of seed, which is the state government, state agency or the central agency, you enjoy greater concession?
Yes, Sairam.
Big discounts.
Yes, Sairam. Nearly, I told you already, 20 metric tons of seed we have given. And in that, I already told that the farmers has got a benefit of 1.5 lakh rupees. And similarly, the watermelon crop, it was sold by the private producer Sangro at rupees kg 4,500. Because of our Swami, because of our Bhagavan's farmers, he eliminated all the marketing channel in between producer and consumer, and mean producer and farmer. They have removed dealers as well as retailers, wholesalers. And the company rate they have given direct to the farmers at village itself. So the farmers has got saving of 6 lakhs rupees.
6 lakhs? You said 4,500 per kg. So after the discount, how much was per kg down to?
It was 3,300, the concession of 1,200 per kg.
Very wonderful. And that's a lot of seed per kg.
I want to enlighten about the 547 kgs. The cost comes to 18 lakh rupees, Sairam. All our poor farmers, even they don't wear even shirts. They have to pay 18 lakhs, but Bhagavan came to rescue and the concession was given. They paid only 12 lakhs and they got a concession of 6 lakhs rupees.
That is such a huge amount. That's a very big saving for a middle class Indian, leave alone a poor farmer.
Yes, I am. So Bhagavan is operating, helping the poor farmers.
Now, you've done these meetings in 6 districts of Tamil Nadu so far?
No, Sairam, it's 6 phases.
6 phases?
6 phases for nearly 20 districts. First phase meeting was done at Villupuram on 17-3. And for districts of, Tiruvallur, Kanchipuram, Villupuram, Kadalur, so nearly 7 districts were clubbed together. All farmers were asked to come at one place. And all technocrats like National Seed Corporation of India and Agricultural Extension Wing, Krishi Vijnana Kendra, Agricultural University, all put together, all technocrats came and discussed about the crop technologies and field problems and gave their techno solutions.
What are some of the major field problems that farmers are facing these days in Tamil Nadu?
Sairam, it ranges from crop to crop. Generally, for paddy crop, we are just intending to give intensive rice system, rice intensification, SRI technique. That is, in that technique, even government of Tamil Nadu is giving more importance to increase yield by 20 to 30%. If the conventional method of paddy is grown, if the person gets 20 bags of paddy with system rice intensification, he will get 7 to 8 or even 10 bags extra. So it is a very big technique, and thereby you will reduce the seed of cost. Whereas the system rice intensification, seed rate in conventional method they use 30 kgs, whereas in the SRI technique they use only 2 kg.
Oh, that's a huge difference.
Yes, and they save seed cost, fertilizer cost. And they got fertilizer chart. The color of the chart and the color of the leaf is to be matched. And depending upon the color of leaf as well as the chart, whether the application of nitrogen can be put or skipped. So thereby they are saving fertilizer cost and they will get more productive tillers and more tillers as well as productive tillers, and the number of grains in panicle, if it is in conventional method, say 80, the SRI technique, you will get 200 to 300 grains in one panicle. So this is a boon to all our farmers. In all our programs, plain areas, we advocate this as a major technology to implement in their fields, Sairam.
Sir, so tell us something about the various districts that you have covered so far under the program.
We have covered almost all districts, Sairam. The second phase of seed facilitating meeting and farmer seminar was conducted on 24-3-2013 at Tirunagari. It's a Sirgali place in Nagapattinam district. Major area grown there is paddy. Nearly 1.5 lakh acres is grown. And it's a Kaveri belt. Extensive or a very good response was there from the farming community. And we are going to supply seed in the next month. And they have given us list. One more thing is, we are suggesting the pulse crop. That is red gram and green gram. As well as black gram. I think you will be knowing much. These three, black gram, red gram and green gram, is being imported from Maharashtra and other states. And in Tamil Nadu, it is a place where very shortage of pulses is there. And by raising this pulse crop, the farmer will get crop rotation, thereby his soil health will be improved. And there is a root nodule called rhizobium in pulse crop. And this rhizobium root nodules existing in the pulse crop will absorb atmospheric nitrogen from 200 to 300 kg per hectare, and it will fix in the soil. So they will enrich the nitrogen and thereby improve the soil health. And we have covered nearby Tanjavur, and nearly five more districts we have covered there. And second phase, generally what farmers will get one variety, say some ADT 39, some paddy variety. They will grow after harvest, you know what they will do. They will keep something for their seed purpose and something for, consumption. The remaining marketable surplus, which is to be given to the market, they will sell it away. So what they will do, repeat the same seed for, for seed purpose, it will lose its vigor. As you know that there are certain seeds, I want to explain to you the breeder seed as well as foundation seed and certified seed, produced at different levels. Breeder seed is produced at agricultural university level. And it will be given to the state government farms for multiplication. And that breeder seeder will come as a foundation 1 and foundation 2 seeds. From state seed farms of government, it will go to the next stage that is called certified seed. That certified seed, they actually give it to the farmer's field. And farmer's field, they raise this seed as a certified seed and they will get the seed. So, I think you want to know the difference between the, less vigor and then genetically pure variety. Yes. And you can compare the Somalia baby as well as the Mexico Washington baby. The Somalia baby, I think you might have heard about malnutrition baby with less vigor and not productive. And whereas the baby, born at Washington, I think you can imagine with good nutritive value and good parental care.
So which seed is the Washington baby?
Washington baby is a seed that is released from Agriculture University. It is being multiplied and given to the farmers as certified seed.
So is that what we are supplying?
Yes, that certified seed alone we are supplying. And there is a procedure, long procedure even for raising seed farms.
So all these best practices and all the knowledge that we have on our side as the Satyasai organization, we are passing it on to the farmers and also educating them. And in an environment where you said that farmers tend to be very secretive, they don't share tips and knowledge, this must be changing. All that you're doing must be changing the landscape of these.
Yes, here it is possible, Sam, because our Bhagavan Lord himself is heading it. And wherever I just think of doing something, he comes, he answers it, and he is helping me in all the way. And our beloved All India President also is more interested and encouraging this session and fully, and his concern for poor farmers also matching on par with Bhagwan. That is why the programs are going successfully in all of Tamil Nadu.
Good to know that, sir. Now, if I may turn to Vijay Kumar, sir. Sir, would you like to update our listeners about the seed supply facilitation meetings and farmer seminars as of July the 21st, very recent ones?
Actually, the first facilitating meeting took place in Vilupuram, as Mr. Sai Brother Sai Prasad told you.
Right.
It was held on 17th of March. That means farmers from 6 districts took part in that meeting. They were so much curious. Immediately after the meeting, they start approaching me. We wanted the seeds immediately. One particular variety of seed. That is ADT 45. Mostly they are from one village called as Sohandi. that is an SSS VIP adopted village.
In the Kanchipuram
In Kanchipuram South. District. That was adopted by Chengalpattu Samithi, 15 kilometers from Chengalpattu town, mm-hmm. that village. Most of the villages are from that place only, Sohandi only. But the time, lead time for procuring these seeds, as per Mr. Sai Prasad was minimum of 2 months. Mm-hmm. But they wanted these seeds within 15 days.
They were that enthusiastic.
Yes, it's really. They had to sow it in the month of end of April itself.
I see.
So they were at the back of me. So I was in turn putting the pressure on Mr. Sai Prasad.
Right.
And he tried his level best. Here we approached National Seeds Corporation. They said, it will take minimum 2 months to supply the seeds. What do you want? We have no stock, they said. Then subsequently, he spoke to some other private supplier. And those villages were taken there to that village near Sri Perambudur. They went and seized those seeds personally. They were not happy with the seeds. It was not 100% up to the mark. They rejected those seeds. They came back, returned. And then here only Swami played his role.
What happened?
All of a sudden, the supply came from government of Tamil Nadu, of course, on our request. Within 15
divine
days.
Divine intervention, huh?
The real divine intervention it was.
When you are doing good work, Swami is with you.
Well, I would like to add something also from that. The moment they told me that they want it, immediately I rang up National Seed Corporation and they said, okay, Sairam, we will be supplying, no problem. And the next day I phoned up Sairam. Regional manager says, Sairam, we don't have seeds. But sir, yesterday you told me that there is seeds and today you don't have. And our farmers, they are just having faith on Swami. We are working for Swami. What? No, sir, I'm very sorry. Then I rushed up to the government of Tamil Nadu. I made a request. I made extensive efforts. And lastly, I prayed to Swami, Swami, you handle it. I have made all my efforts and it is up to you, you give your result. And Swami played, that is the maximum, want to add it, the seed which was kept for 3.5 tons for some other purpose with the subsidy, everything ready, that was at the moment that diverted to these people.
Oh.
The total quantity was 3.5 metric tons of this particular ADT-45 variety.
Seed.
And the market price of this seed was 39 rupees per kg, whereas this was supplied at the rate of 17 per kg.
Oh, less than half.
Less than half. Total savings for these 45 villages farmers was 77,000 rupees.
That's a lot of money in seed savings. Oh, that's such a happy story. It makes your heart feel so joyful that Swami's programs are really reaching out to such needy people who provide everything. Swami is such a soft spot for our farmers who toil so hard.
The day we distributed these seeds to those farmers in that village, you won't believe, normally these seeds have to be collected from the nearby godown, government godown. Whereas the seed was supplied at the doorstep of the farmers, in that went to the village itself.
And I was looking at the photographs, the pictures, and I saw every drum of seeds has Bhagwan's picture on and the coconut and the flower. So I guess every seed is energized. First of all, it's very high quality, pure. It's not genetically modified. It's not a BT, biotechnology seed. It's a hybrid, pure seed. On top of it, it's got energized by Swami's divine name,
exactly,
the
exactly
prayers you do, the pictures you put. This is one happy story.
One more point. In fact, the head of that village by name Mr. Ramakrishnan, after distribution of the seeds was over,
right, sir,
he has promised that after cultivation, we are willing to send one lorry load of paddy to Prashanthi Nilayam for Narayana Seva.
Oh.
He made an open announcement on that day. And as per the advice of our National Vice President, Mr. Ramani, our youth went and chanted Rudram at the field before sowing the seeds.
This sounds like the Vedic ages, huh? Everything being done in the proper manner, ethically, taking God's name and worshipping Mother Earth.
Yes, sir. Yes, our National Vice President, he will be just sticking to that. Everything is spirituality and you should chant whenever our field visits is going with Rudram, chant with Rudram. And we are just, after chanting Rudram, really, it is energized with
the soil, the atmosphere, everything is energized.
Next, another, this groundnut seed we separated, we gave it to one farmer. This farmer actually underwent surgery, open heart surgery in our hospital.
Super specialty.
Super specialty.
Swami is rescuing him in every which way, huh?
2 years back.
Okay.
And he has become an ordained devotee of Swami. And he has got about not just 3-4 acres only. After that, 1 acre he used this groundnut seed, VRI2. Market price of this was 200 per kg, whereas he got it at the rate of 70 per kg.
Oh, a huge discount.
Huge discount, saving of 11,700.
What a relief it must be to farmers who are under this huge burden of debt, because 90% of their seed comes from private providers.
There, because we should be self-sufficient and self-dependent. And some of the farmers in Kanchipuram, they want to produce certified seeds. The supply is self-sufficient as well as supply to others. Raising seed farm means for seed purpose, not for grains for consumption.
I understand.
They have got also a very, very big plan for that. And they are preparing for that, and 2 to 3 acres there, I think the work is going on.
I guess with this education, their vision is just developing.
Yes, yes.
They can do so much more with the same amount of land.
Yes.
So all this knowledge transfer is really helping. Wonderful.
The third phase of meeting was held at Gobi Chetty Paliyam, where one convener called Karthikeyan, he is also a devotee of Bhagavan, and he was a software engineer in Wipro. He resigned the job, and he wants to, take care of his, forefather's property, the land left by his father, around 15 acres. Now he became a core group member, and to collect details and to serve as a farming society there. They don't know even the existence of National Seed Corporation of India, with its branches throughout India, 27 states, and giving various subsidies like tarpaulins at the cost of 1,500 rupees free, and storage bins 1,500 free, and they want to actually reimburse the total soil testing cost to Sai farmers. They have made a public announcement that whatever the soil samples taken from such a Sai farmers will be reimbursed. And they are giving subsidy in groundnut 12 rupees per kg. And under National Food Security Scheme, the subsidy is given by the National Seed Corporation of India is 5 rupees per kg. So even this information is not known by many of our devotee farmers.
So, but now they are learning through
all learning. They are learning. They are very happy that the program is giving them additional information. I think a boon, a support from our Bhagavan.
This truly is taking spirituality in all aspects of life. And little did we think at one point in time how spirituality and agricultural practices are one and the same. And now with this all the information dissemination that you are doing, and empowerment at the grassroots levels, telling the farmers what they can avail of, bringing all these, we only hear of these policies and schemes at the time of the budget.
I would like to add one more thing. I already told you that farmers are shy type, and they never even discuss what they are doing to the next farmer. And to get benefits and all, what are the documents? First, we have advised in all our farmers' seminar that they should not go to a pesticide dealer for any recommendation of pest affected problem. Generally, these farmers will go to a pesticide dealer and ask for pest problem and any pesticide to be given for spraying. And that we have asked them to stop it. And the pesticide dealers are all cheating them, and the unrelated a cheaper substance which is not relevant to the pest they give, and ultimate sufferer is our farmer. And the documents which they have to have on their hand, that is Chitta Adangal means survey number as well as a patta number, and the area covered,
land survey
details, and the field measurement FMB details, and they should have a ration card, and they should have a small and marginal farmer certificate to be issued by the authorities of revenue department, either by Tahsildar or village administration officer. So that if these farmers do have all the documents in their hands, it is very easy for them to approach any government sector, either National Seed Corporation of India or State Seed Corporation of State of India or Agricultural Extension Wing for getting any assistance. And also we have informed all the farmers that there is a priority register is maintained by all Agricultural Extension Wings. What are all the schemes they are giving, and it is the priority of the farmers. If they give for that scheme, they will incorporate in that register, and whenever that schemes comes, they will offer the schemes to the farmers. All these type of informations we are posting them in these seminars, and we are giving them some strong strength for them through Bhagavan.
Very nice. And they also need a couple of passport size photos, I see here, when they are putting their documents together.
Yes, yes.
Very good. I understand you have had so many phases, but just can you give us a snapshot of the kind of amount of seed we have distributed and the number of farmers who have benefited from it and the kind of economic benefit of the whole exercise so far? And this is only a 5-month-old project, and we are already cruising with it. So can you bring us up to speed what all we have achieved with this Bhagwan's grace in the last 5 months?
Yes, Iram. Just we have given technical support, and we have discussed field problems in these 6 phases of farmer seminars. Nearly 900 farmers have undergone this seminar benefit, and 230 organization members have also undergone this technical interaction. And with reference to supply of seed, Sairam, as Brother Vijay Kumar told, that we have supplied 3.5 metric tons there. And in Kadalur district, we have supplied 4 metric tons. And in Padavedu Thiruvannamalai district, we supplied 2.5 metric tons. Put together, we have supplied 10 metric tons of seed with benefit of 2 lakh rupees to the farmers, which will give 20% extra yield because of the genetically pure and high yielding varieties.
So, sir, total all, in overall
total
terms?
Total all, nearly 230 farmers, Sairam.
Who have benefited from this effort?
Yes.
And the kind of seed, I understand, is close to 40 metric tons that we have?
No. It's only 10 metric tons. And in the few months, we are going to give them 15 to 20 metric tons. In the month of ongoing scheme, August 12th, we have fixed at Thiruvallur district, Arani. Thiruvallur district already, I told you that we have supplied for the past 5 years 20 metric tons. Now, on the August 12th, we are going to supply them 7 metric tons. At 50% subsidy, that is, the market rate is 40. They are going to get it at 17 per kg. And another thing is, we are going to get one more, Tirunagari, Sirgali. I told you that Nagapattinam district. We are going to supply 6.5 metric tons. And in the Kanchipuram South also, we are intending to supply 13 metric tons. And like that, it goes, I don't know Swami how he will take and help all farmers. It is only, we are all instruments and he is the operator, Sairam.
And at Radio Sai, we hope and pray to Swami that the population of Satya Sai farmers in Tamil Nadu continues to grow, and then perhaps with his grace and blessings, it grows into the rest of this country. It's a beautiful model you have created. And would you like to add something as your final thoughts?
Yes, I am. If it comes to adaptability, some 16 states are having, those states. That is, they do have national as a state seed corporation. Rather, I can say...
A local chapter.
Local. This is the national seed corporation at national level with the 27 states. And the state seed corporations are existing in Akola, Maharashtra, Bangalore, Karnataka, Hyderabad, AP, Bhopal, MP, Bhuvaneswar, Orissa, Chandigarh, Gandhinagar, Gujarat, Guwahati, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Panchakula, Haryana, Patna, Jaipur, Chhattisgarh, Thrissur, Kerala, Udham Singh Nagar, Uttarakhand. So the rest of the states also can adapt the same. They can indent their requirement to these state seed corporations 2 months in advance. They can also supply and help the poor farmers. And one more thing I have to add it, and the farmers, we are now just requesting our own Satya Sai farmers to raise seed farms and produce seed to supply themselves and to supply to other farmers of devotee farmers as a service motive.
Wonderful to hear this. I hope the success of your program inspires all other states in India, especially the ones you mentioned, for whom it's very easy to access the seeds from the National Seed Corporation. And this program expands beautifully across the whole country. And it's a very beautiful model because it can be adapted by other countries too. There are many countries, for example, in Latin America, where we hear of tremendous number of farmer suicides because crops fail and they're switching to genetically modified seeds, which are causing diseases as well as economic failures. So it's hurting them, the farmers, the health of the planet, the health of people who eat that produce. What you're doing is absolutely organic, and we wish you the very best.
Sai Ram, Sai Ram. Jai Sai Ram.
Jai Sai Ram to both of you, and thank you for joining us today.
Salam, dear listeners, welcome once again to today's Thursday Life. This is the segment Service Love in Action. I am Raghu from Team Radio Sai. So what you heard till now was a conversation with Mr. K. Sai Prasad and Mr. A. Vijay Kumar, two members of the Sri Satya Sai Seva organization Tamil Nadu, who are very actively involved in what, as you heard in the conversation, in a unique and wonderful project, that is seed and seed supply and facilitating project to the farmers of Tamil Nadu. Well, just to brief about this project is about conducting seminars and distributing seeds to the farmers, and it's a huge step towards agriculture development, as these seminars organized give the farmers an exposure to improved crop technology, more efficient farming practices, education about government subsidies available to them, and usage of less water. So providing for good quality high yielding seeds to these farmers at a concession rate results in a big savings and is a huge help to these farmers. So dear listeners, we hope you are inspired and have been benefited by this conversation with Mr. Sai Prasad and Mr. Vijay Kumar. In conversation with them was Radio Sai's Karuna Munshi. Your feedback and comments on this are welcome. You can, as always, write to listener@radiosai.org. So dear listeners, this is Asia Stream of Radio Sai Global Harmony, bringing you the message of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. The time right now in our studio is 11:53. So moving forward in this segment, before listening to yet another seva story that is about the rickshaw pullers of New Delhi, let's listen to a beautiful Sai bhajan.
शांति का वरदान दो,
मुझे भक्ति का वरदान दो,
मुझे भक्ति का वरदान दो,
मुझे भक्ति का वरदान दो,
करुणामयी साईं
Dear listeners, that was a Sai Bhajan from Sai Blossom product, the album Bhavanjali. Well, to know about the various Sai Blossom products, please log on to the website saiblossom.org. So this is a segment, Service Love in Action, in which we bring you accounts of Swami's love and our love for Swami, translating into service to humanity. Well, in the first part of the segment, you heard a wonderful Seva story, that is the seed supply and facilitating project undertaken by the Sri Satya Sai Seva organization of the South Indian state of Tamil Nadu for the farmers of the Tamil Nadu. Now let's listen to another wonderful story, which a Seva story organized by the Satya Sai Seva organization of New Delhi, the capital of India. It's a service project for the rickshaw pullers of New Delhi. In fact, dear listeners, in the month of August, the Seva Dal volunteers who had come here to Prashant Nilayam for Prashanti Seva were from NCR Delhi. So, among the Seva Dal volunteers who had come here were few who were involved in this project. So, at that time, they had come here to Radio Sai Studio, and Radio Sai's Karuna Munshi had a conversation with them. In fact, they spoke to us in the language Hindi. So right now I'll be playing for you that conversation, and after that conversation I'll summarize what they spoke. I'll summarize it in English for the benefit of listeners who don't understand Hindi. So to begin with, let's listen to Mr. Sharad Srivastav, who is the key member of this rickshaw project.
हमें अपना परिचय दीजिए और ये जो खास प्रोजेक्ट है आपका इस बारे में थोड़ा बताइए.
साईराम, मैं शरद श्रीवास्तव गाजियाबाद से हूँ, दिल्ली एनसीआर सत्य साई सेवा संगठन दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ
जी.
ये प्रोजेक्ट रिक्शा श्री सत्य साई रिक्शा प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया गया है
जी,
जिसकी अवधारणा 2009 में मैंने सोची थी और हमने 5-6 सेवा दल के साथ बैठ के एक मीटिंग करी, लेकिन वो मीटिंग उस समय सक्सेसफुल नहीं हो सकी. लेकिन 2010 में जब स्वामी ने अप्रैल में विजिट किया
जी, दिल्ली आए थे
तो दिल्ली विजिट में मैं मोबाइल टीम में था और मोबाइल टीम में मैं था लेकिन हमेशा मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचता रहता था. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको एक लिख करके प्रोजेक्ट आप स्वामी को दें, और मैंने एक दिन बैठ करके उसको पूरा लिखा. लेकिन उस पूरे विजिट के दौरान लास्ट में जब सेवा दल की दर्शन होना था तो मेरे हाथ में वो प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं स्वामी को दे नहीं पाया क्योंकि तुरंत ऑर्डर हो गया मोबाइल टीम को कि स्वामी निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए, आप लोग चल दीजिए। और लास्ट में मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था और स्वामी से यही प्रार्थना कर रहा था कि स्वामी ये प्रोजेक्ट कैसे होगा। स्वामी के हाथ में तो नहीं दे पाया, लेकिन उसके बाद में मैंने स्वामी से कहा, मैंने कहा स्वामी प्रेयर कर रहा हूं कि मैं जो संगठन की हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं यदि आपकी हां है तो उनके हाथ करवा देना। और यही हुआ, स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोनों ने इसको ओके कर दिया।
तो प्रोजेक्ट है किस विषय में, क्या?
अब प्रोजेक्ट ये है कि ये जो रिक्शा पुलर्स हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, हाँ। ये रेंट बेसिस पे चलाते हैं।
अच्छा।
सालों साल, दस दस साल, बीस बीस साल से रिक्शा चलाते हैं।
हाँ।
आज की डेट में रिक्शा किराया लगभग 50 रूपीज पर डे।
तो काफी कमाई करनी है ताकि पहले 50 रूपये आपको किराया,
तो ये इनका किराया निकल जाता है। ये इनका मतलब 10 साल 20 साल से रिक्शा इनका अपना नहीं हो पाता।
अच्छा।
तो मेरे मन में ये आया कि स्वामी हम लोग को तो कोई लोन मिल जाता है, मकान खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं,
हाँ।
दुकान बना लेते हैं, इनकी भी कुछ मदद की जाए।
हाँ।
तो वही प्रोजेक्ट बनाया हमने कि इनको हमने कहा हम रिक्शा खरीद के आपको दे देंगे।
अच्छा। सत्य साई संगठन खरीदेगा रिक्शा?
यस
जी।
और रिक्शा खरीद करके इनको दे देंगे।
हाँ।
इनसे कहा कि आप अपने आत्मसम्मान से इस रिक्शे को प्राप्त करिए।
अच्छा।
डोंट टेक एज ए डोनेशन, डोंट टेक एज ए बैग, आप इसको आत्मसम्मान से, और इनका आत्मसम्मान बना रहेगा, हमारा कभी घमंड नहीं होगा कि हमने रिक्शा इनको दिया है।
हाँ।
पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य कि यह परिवार हमारे साथ जुड़ जाएगा।
अच्छा।
इनके बच्चों को जो 10 महीने के बाद इनके पैसे बचेंगे उससे हम इनको सिखाएंगे कि आपके जो पैसे बच रहे हैं किराए के उससे आप बच्चों को पढ़ाइए।
तो क्यों, जब आप इनको खरीद के दे रहे थे इनको आपको पैसे वापस नहीं देने थे सत्य साई ऑर्गेनाइज संगठन को?
हाँ बिल्कुल देने थे, लेकिन
सूद नहीं था।
उस रिक्शे का जो मूल्य है वो 10 महीने में पूरा हो जाता है।
अच्छा अच्छा अच्छा।
10 महीने के बाद हम इनसे एक पैसा नहीं लेते एक्स्ट्रा।
अच्छा, अच्छा। और तो कोई सूद वगैरह?
कोई सूद नहीं। अच्छा। कोई इंटरेस्ट नहीं।
अच्छा।
और अवार्ड के तौर पर एक प्रोजेक्ट में स्कीम रखी है, प्रमोशनल स्कीम, कि यदि आप अपना पैसा बिल्कुल टाइम से जमा कर देते हैं तो आपको 300 रूपये का कैश रिवार्ड नेक्स्ट फंक्शन में दिया जाएगा।
अच्छा।
जिससे कि इनके में एक मोटिवेशन हो कि मैं अपना काम टाइम से करूं।
एक रिक्शा आता कितने का है?
इस समय एक रिक्शा 9,500 का पड़ता है। अच्छा। पर्दा वगैरह सब लगाकर।
अच्छा।
जिसपे बाबा की फोटो चलती है।
अच्छा।
तो इस प्रोजेक्ट के कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि एक तो इनका सेल्फ रिलायंस, अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपने ही पैसे से ये अपना एक रिक्शा कर लेंगे। उस बचे हुए पैसे से ये अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं जिसमें हम इनकी मदद कर सकें।
अच्छा।
तीसरा उद्देश्य कि स्वामी का मैसेज पूरे शहर में फोटो लग करके और साथ में लव ऑल सर्व ऑल
जी,
मानव सेवा माधव सेवा, इस तरीके के जो मैसेजेस भगवान ने हम लोगों को दिए हैं वो मैसेज पूरे शहर में घूमता रहेगा। और 25 जुलाई 2010 को ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें 5 रिक्शे दिए गए थे। 5 रिक्शे से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें आज यहां बैठे हुए हैं सत्यनारायण हैं और प्रमोद पासवान। तो आप समझिए कि ये 2010 से साथ में आ गए। उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम होते हैं सत्य साई संगठन के उसमें ये लोग रेगुलर जाते हैं। अगर ये हमने दान में दिया होता तो दे के हम भी भूल जाते और लेके ये भी हमें भूल जाते।
अब तो ये हमारे साथ जुड़ी गए, हमारे परिवार का,
हमारे परिवार का हिस्सा हो गए।
हाँ जी।
और ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे सेवा में और इनको जैसा हमने पूछा है, क्योंकि हमें यहाँ इस बार जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की दी गई है आउटर की, तो उस दौरान मैं इनसे पूछता रहता हूँ इनके अनुभव, तो ये बहुत खुश हैं। और 2010 से जितने भी रिक्शे पुलर्स जो हमारे, और एक मैंने इनको नाम और दिया है जो फॉर्म में हम भरते हैं, ऑक्यूपेशन, तो आई नेवर राइट ऑक्यूपेशन एज ए रिक्शा पुलर, मैं कहता हूं इनका बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का
जी,
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेल चला करके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती है, पब्लिक को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करती है, टैक्सी वाला भी कार चलाता है और यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करता है,
रिक्शा का काम भी
तो ये भी यही करते हैं कि यहां से लेकर के वहां आदमी को ट्रांसपोर्ट करते हैं,
इज्जत से करते हैं,
इज्जत से करते हैं,
मेहनत से कमाई करते हैं,
मेहनत से कमाई करते हैं, तो इनको पूरा सम्मान स्वामी ने दिया है, बिल्कुल दिया है, और एक माध्यम हमें बनाया है बस। और ये मेरी एक कल्पना थी जिसको स्वामी ने पूरा किया है, इसके लिए स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अब टोटल कितने रिक्शा?
43 रिक्शा, अभी पिछले महीने में 43 रिक्शा दिया गया है। 43 रिक्शे, अभी 43वां रिक्शा पिछले महीने में दिया गया है। और कई लोग इससे इंस्पायर है, उनको लगता है कि मेरे बच्चे का बर्थडे है तो मैं कुछ पार्टी वगैरह न करने के बजाय एक व्यक्ति को रोजगार दे दूं।
हाँ, कितनी अच्छी बात है।
क्योंकि पिछले महीने जो रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है
जी,
वो इसी तरीके से हुआ है। एक साई डिवोटी है, रिटायर्ड प्रिंसिपल मिस्टर नेमोरिया, उनके पोते का जन्मदिन था, तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि शरद, मैं चाहता हूं कि ये रिक्शा पार्टी करने के बजाय एक रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए।
खुशी
तो एक व्यक्ति को रिक्शा मिल जाएगा। हाँ। और उसके बाद ये
जीवन भर के लिए व्यवसाय का एक साधन बन जाएगा। पार्टी में तो आज लोग केक खाएंगे, गुब्बारे खेलेंगे, थोड़ा नाच गाना शोर संगीत और बस खत्म
चले जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है ये चलता चला जा रहा है। स्वामी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट चलता रहे, जितने लोगों का आपके आशीर्वाद से कल्याण हो सके वो करते रहें। और भी कुछ अगर हमारे को विचार आते हैं और स्वामी हमें विचार डालें जिससे कि हम इनके लिए कर सकें, स्कूल कर सकें, बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था कर सकें, कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए, तो मैं स्वामी से यही प्रार्थना करता रहता हूं। और फिलहाल तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही था।
बहुत बहुत धन्यवाद।
साईराम।
साईराम।
साईराम डियर लिसनर्स, सो दैट वॉज मिस्टर शरद श्रीवास्तव and he told us about the Riksha project that the Sri Sathya Sai Seva organization of NCR New Delhi have initiated. In fact, Mr. Sharad Srivastava is the key member of this project. So for the benefit of listeners who don't understand Hindi, let me just summarize what this project is all about. So the Riksha pullers operate Riksha in New Delhi on rent basis. In Ghaziabad, these daily Riksha pullers have to pay a rent of rupees 50, and they can't aspire to own the rickshaw even after 10 years. So to help these rickshaw pullers, what Mr. Sharad Srivastava thought was that banks provide loan to us for various activities like purchasing a house, a car, a bike, etc. So with this loan, Mr. Sharad Srivastava decided to purchase rickshaws and give them to these rickshaw pullers. Each rickshaw costs around 9,500 rupees. Now, to make the rickshaw pullers feel the ownership of these vehicles, these rickshaw pullers were told to pay for the rickshaw in installments. So what he did was, he took loan from bank, bought rickshaws to these rickshaw pullers, and made these rickshaw pullers pay the amount through installment without any interest. So this project gives the rickshaw pullers an opportunity to own a rickshaw, that too with self-respect. That means a rickshaw is not donated to them, it is given to them, and after a few months they repay the full amount. So they can maintain their families and also educate their children with their earnings comfortably. Now another unique thing about this rickshaw is that they display Swami's message, love all, serve all, help ever, hurt never, etc. on the rickshaws. So with this get wide readership as the rickshaws go around the city. So till date about 43 rickshaws has been distributed to many rickshaw pullers. So when this conversation was recorded, a few rickshaw pullers, the beneficiaries of this project had come here. So Radio Sai Karuna Munshi had a conversation with them also. So let's listen to the experience of these beneficiaries.
साईराम, आपका रेडियो साई में बहुत स्वागत है। बाबा, आपका परिचय दीजिए, आपका नाम और आप कहाँ से आए और आपकी उम्र क्या है?
मेरा नाम सत्यनारायण पासवान है
जी।
मेरा घर बिहार परसा है, बिहार बेगूसराय जिला परसा है।
अच्छा।
और मेरा उम्र 60 हो रहा है।
अच्छा, मगर काम आप दिल्ली में करते हैं?
जी हाँ।
तो आपका ये अनुभव सत्य सहाय संस्थान से जुड़ने का रिक्शा के द्वारा स्टार्ट हुआ, इस अनुभव के बारे में हमें बताइए।
इस अनुभव से मैं बहुत खुशी हूँ, और जिस दिन से संसर्ग हुआ है सर श्रीवास्तव से, उस दिन से मैं बहुत खुशी हूँ और आनंदपूर्वक कमाता हूँ, खाता हूँ।
पहले आप क्या काम करते थे?
पहले गांव में ही पढ़ाते थे।
अच्छा, फिर आप शहर आ गए रिक्शा के काम के लिए
आ गए।
तो फिर सत्य साई संस्थान के से आपको एक रिक्शा मिली।
जब से साहब से सरस्वती वास्तव से 2004 में इनसे भेंट हुई
जी,
और उनसे प्रेम भाव चलते रहे। प्रथम बार जब ये मिले
जी
तो बोले सत्यनारायण मैं तुझे रिक्शा देना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। कुछ दिन के बाद फिर जब प्रोजेक्ट चला तो हमको बुलाए और बोले कि आप एक और साथी को ले आइए। मैं प्रमोद को ले आए और दोनों को 25 जुलाई 2010 में प्रथम बार रिक्शा मिला था।
आप कहाँ पे दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं? किस
मैं गाजियाबाद में चलाता हूँ, जहाँ पर कि हमारा श्रीवास्तव साहब को वसुंधरा
गाजियाबाद
वसुंधरा तीन सेक्टर में।
कितनी कमाई हो जाती है दिन की?
दिन में काम चलता है तो 350 भी हो जाता है, कोई 400 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है, 250 भी हो जाता है, 150 भी हो जाता है।
और ये सारा पैसा आपका अपना है, क्योंकि अब तो आपको कोई सूद नहीं चुकाना,
नहीं कुछ नहीं,
कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देना।
जी नहीं, कुछ नहीं देना।
और इस प्रोजेक्ट के दौरान आपका परिवार भी संस्थान से जुड़ गया?
जी हाँ।
कौन कौन है आपके परिवार में?
मेरे परिवार मेरे पुतोजी हैं, 5 लड़के हैं और मेरी पत्नी है।
तो आपके बच्चे आपकी पत्नी भजन में जाते हैं?
जाते हैं। जब पुतोजी यहाँ रहते हैं तो जाते हैं। गाजियाबाद आए थे जब मुझे रिक्शा मिला था, और एक बार और भी आए थे, अभी तो यहाँ नहीं है। तो जब जब यहाँ रहती तब से आती है।
तो आप सेवा में पहली बार आ रहे हैं इस वक्त?
हाँ, पहली बार। और ये हमारे जो हैं ये गुरु के रूप में यहाँ तक पहुँचाए हैं, ये रास्ता दिखाए हैं।
कैसा रहा अनुभव अब तक?
बहुत खुशी की बात है।
क्या ड्यूटी कर रहे हो आप?
अभी कल्याण पंडवा में ड्यूटी कर रहा हूँ।
अच्छा, सिक्योरिटी की ड्यूटी कल्याण मंडपम में।
जी हाँ।
देखिए, आपका अनुभव, आपका परिचय भगवान श्री सत्य साई बाबा से, उनके ये जो इंस्ट्रूमेंट है शरद जी और साई संस्थान है, इनके द्वारा हुआ।
जी हाँ, इनके द्वारा हुआ।
तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके मन में क्या भावना है, सत्य साई बाबा कौन है आपके लिए?
सत्य साई बाबा को जब से मैं यहाँ आया हूँ, और पहले से बताते थे सर श्रीवास्तव
जी,
तो उन्हीं के द्वारा आए हूँ और वे गुरु बन करके यहाँ लाए हैं। और उनके बाद आने के बाद वही रास्ता दिखाए हैं और दिखा करके दर्शन करा के बहुत धन हुए हैं। और मुझे अनुभव है कि ये परमपिता पूज्य परमेश्वर स्वामी जी हैं, यही सब कुछ करता धरता है और करते हैं, और हमारे लिए और सारे संसार के लिए, जगत के लिए करते हैं और करते रहेंगे।
आते रहेंगे आप सेवा में?
जी हाँ।
अभी वापस जाके अपने परिवार वालों को क्या बताएंगे? आप पुट्टपर्ती पहली बार आए दक्षिण भारत की ओर, इतना दूर, इतना लंबा सफर करके, तो कैसा अनुभव रहा? जब घर जाएंगे क्या बताएंगे?
फिर वहां मैं बताऊंगा, फोन करके बताऊंगा। ऐसे यहां से किए थे तो बताऊंगा कि मैं वहां हमारे साहब ले गए हैं श्री श्री वास्तव, इनका नाम पूरे जानते हैं हमारे घर में, और वहां जाके मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया, खुशी हुई।
आप इतने दिन सेवा में यहाँ आए
जी,
आपकी दिहाड़ी रोज की तो हाथ से चली गई,
तो इसके लिए तो यह है संत संग्रमण हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कहते हैं संत समागम में ये पूंजी को नहीं देखा जाता है।
अच्छा,
उसमें पूंजी तो पैसा तो मान लीजिए कि बदमाश चोर लुच्चा गुंडा के भी पास होता है, पति पत्नी उसको भी होते हैं, लेकिन संत समागम सबके साथ नहीं होता। उनके साथ वे जो भक्त परम प्रिय हो जाते हैं उन्हीं के पास ये भक्ति आता है और दूसरे लोगों के पास नहीं आता है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने साई राम।
कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े
जी,
काको लाग में पाए, गुरु गोविंद आपने दिन गोविंद जी बताए। तो गोविंद को बताने वाले हमारे श्री श्रीवास्तव हैं,
ये जो भगवान के चुने हुए इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा आप तक उनकी कृपा पहुंची
है।
बहुत धन्यवाद साईराम जी।
साईराम,
आपका परिचय दीजिए।
मेरा परिचय प्रमोद पासवान।
कहाँ से आए पासवान जी?
घर तो मेरा बिहार पड़ता है।
मगर काम कहाँ करते हैं?
गाजियाबाद वसुंधरा।
वसुंधरा गाजियाबाद में। तो भगवान आपके पास एक रिक्शा के रूप में आए, मैंने सुना
जी,
2010 में
जी।
आपके अनुभव बताइए कैसा रहा?
मेरा अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा। जब से मेरा ये रिक्शा मिला है तब से मैं पहले से मैं बढ़िया।
और फिर सेवा में कैसे आए आप?
सेवा में भगवान ने बुला लिए, श्रीवास्तव जी की द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
क्या क्या ड्यूटी लगी आपकी?
ड्यूटी है मेरा कल्याण मंडपम में।
कल्याण मंडपम में
जी।
अच्छा, वहाँ आप भी सिक्योरिटी करते हैं
जी।
अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ का वातावरण? पहली दफा आप दक्षिण भारत आए
जी।
कैसा लगा हमारा प्रशांति निलियम?
बहुत बढ़िया लगा।
पसंद क्या आया सबसे ज्यादा?
बहुत मेरा पसंद, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ से मेरे उठने का दिल नहीं करता है, मैं लगता है जो मैं यहाँ बैठे रहूँ।
ऐसा क्यों?
मतलब बढ़िया लगता है।
बढ़िया लगता
जी।
है जी। आपने महासमाधि का दर्शन लिया अभी
जी?
आप घर जाएंगे, अपने परिवार वालों को क्या बताएंगे कि मैंने इतने दिन की दिहाड़ी किस लिए खोई?
मेरे घर वाले भी बोले जे जाओ, मेरा घर के मेरा पत्नी मतलब बीमार थे
जी
3 महीने से, तो मैं उन्हें बहुत पैसा लगाए, मतलब 20,000 रूपये 3 महीने में खर्चा किए, नहीं ठीक हुआ।
तो क्या तकलीफ थी उन्हें?
उन्हें दर्द थे शरीर। अच्छा। पूरे शरीर के अंदर में दर्द।
अच्छा,
थे।
अच्छा।
मतलब हर एक डॉक्टर मतलब अल्ट्रासाउंड किए, एक्सरे भी किए, खून टेस्ट किए, पेशाब टेस्ट किए, सभी कुछ हुआ। तो मेरा एक दिन अचानक ऐसा मन हो गया जैसे साहब ने श्री वासुदेव जी दवाई कैंप भी लगाते हैं महीना में एक बार, तो दवाई लिए और साहब को मैं बोले जो मैं कैसे जाऊं बाबा के दरबार में, मैं पहुंच सकता हूं, मेरा तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो साहब ने मेरे को बताया जो तू भूत ले जाना, और भूत आज मैं भूत लाया, शनिवार का दिन था
विभूति। हाँ
जी। और इतवार को दवाई मिलता है
जी,
कैंप लगता है, तो कैंप से वो दवाई मिला एक हफ्ते के लिए। वो एक हफ्ते खाए तो मतलब 60% आराम हो गया।
अच्छा।
और फिर मैं दवाई लेकर आया हूँ, देकर आया हूँ, मैं फोन करके पूछा हूँ तो बोला नहीं आराम है, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं बाबा से मैं जुड़ा हूँ और मेरा बहुत तो मन लगता है, और मेरे घर वाले भी बोला जे नहीं जाओ।
तो आपका परिवार भी जुड़ गया साइज
जी, जी, जी।
काफी परिवर्तन आया है
जी,
आर्थिक सुधार भी
जी।
कितना कमा लेते हैं हम दिन को रिक्शा से?
300-350 ऐसे कमाते हैं।
हाँ।
जी।
गर्मियों में बहुत मेहनत का काम
जी।
है और ठंड में भी
जी।
ये आपका पहला अनुभव है पुट्टपर्ती आने का सेवा में, आपको लगता है आप दोबारा मुड़ के आएंगे पास
जी? जी आएंगे आएंगे, हमको तो हर एक बार आएंगे, अगर बाबा बुला लेंगे तो आ जाएंगे, अपने मन से तो नहीं आ सकते हैं।
हाँ।
बाबा का अगर बुलावा होगा तो मैं पहुंच सकता हूं।
बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, धन्यवाद। साईराम भाई साहब,
साईराम
आपका परिचय दीजिए।
हमारे परिचय शिव कुमार रजक।
रजक जी आप कहाँ से आए?
हम बिहार से हैं, गाजियाबाद वसुंधरा में रहते हैं, करीबन 7-8 साल हो गए।
अच्छा, आपकी उम्र क्या है?
हमारी उम्र 35-36 है।
35-36। तो आप भी ये रिक्शा का काम करते हैं वहाँ पे?
हम रिक्शा के काम करते थे और हम रिक्शा चला करके अपने बच्चों के जीवन सही से नहीं पाल सकते थे, कुछ पैसा उधर चले जाते थे और हमारा टाइम सही से नहीं कट पाता था। ये सत्यनारायण और प्रमोद जी हैं जिन्होंने 5 रिक्शा इन लोगों के मिले
जी, सत्यसाई संस्थान से।
हाँ, सत्यसाई संगठन से,
संगठन से। हाँ।
फर्स्ट बारी में तो हमने इनसे परिचय किए, तो इन्होंने बताए जो फलाने जगह चले जाओ इतने नंबर में, वो खुद ही बता देंगे। तो हम खुद ही इनके पास गए, अपने तकलीफें बताए, इन्होंने हमारे भगवान बाबा के दुआ से हमारी बात सुने। फिर हमें 7 महीना बाद भगवान बाबा के डेट करने से 10 या 12 दिन पहले हमें रिक्शे प्रदान किए।
अब आप ये जो रिक्शा चलाते हैं, जो आपको साई संगठन के द्वारा मिले हैं, इन पे जो पर्दे हैं उन पे बाबा की छवि छपी हुई है और बाबा की जो टीचिंग्स हैं, जो वो सिखाते हैं, सीख लव ऑल सर्व ऑल, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये सब लिखा है। तो जब आप लोगों को उठाते हैं, रिक्शा में बिठाते हैं, कोई कभी इस विषय में बोलता है, कुछ पूछता है आपके जो पैसेंजर्स होते हैं?
वो जिनको जानकारी है वो तो पूछ लेते हैं, जिनको नहीं जानकारी है तो हम जितने रिक्शे पोलर हैं आपस में मिलजुल के साई राम बोल लेते हैं, और जिनको जानकारी है साई संगठन में
जी,
वो तो खुद ही कह देते हैं पहली साई राम, तो हम भी कह लेते हैं
साई राम। स्वामी की रिक्शा है, बाबा की रिक्शा है, खास रिक्शा चला रहे हो जिसमें भगवान की छवि है।
भगवान
यहाँ पे क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप?
यहाँ पे हम साई गायत्री में
अच्छा
ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पे एक डोगी है साई चेतना है, तो वो वहाँ पे कोई आदमी हो या ना हो वो हमेशा वहाँ रहते हैं।
अच्छा, कुत्ता?
हाँ
जी।
और उनको खाना मिले या ना मिले तो भी वही रहते हैं। तो वहाँ पे बगीचे लगे हैं, फूल लगे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये ड्यूटी करते हैं, उनको खाना खुना ला कर देते हैं और जितने बगीचे हैं उसमें पानी डालते हैं, घास घूस होते हैं उसको सफाई करते हैं, और फिर हम लोग भी खाना खाते हैं टाइम से, फिर आकर के 24 घंटा वही ड्यूटी देते हैं।
अच्छा, ये आपके जीवन का पहला अनुभव है ऐसी सेवा कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है?
हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुशी मिल रही है जो भगवान बाबा दोबारा अवसर फिर दोबारा दे।
तथास्तु, भगवान करे ऐसा ही हुआ, आपको बहुत सारे ऐसे अवसर मिले, हर साल आइए, आपका अपना घर है।
हमें आने से पहले ऐसा लग रहा था जो हम भगवान बाबा के दरबार में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक बार हमने साहब के पास आए, बोले जी साहब हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी टिकट बनी हुई थी, फिर भी हमने साहब से बोले जी हम साहब नहीं जा पाएंगे, हमारे यहाँ कुछ घटना है इसके लिए हम नहीं जा पाएंगे। साहब ने बोले जो ठीक है तुम नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, तुम 1 तारीख तक यहां से जाओ और तुम बाबा से प्रार्थना करना जी बाबा हमें आने का रास्ता बना दो, और जाओगे या नहीं जाओगे झूठ मत बोलना, 1 तारीख को हमें बता देना हाँ या ना।
ठीक है,
हम यहां से गए, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिए, फिर हमें मन में बाबा का उपचार आया जो नहीं हम बाबा के दरबार जाएंगे जरूर जाएंगे, हमारे दिल में ये आया जो भी कुछ है हमारे साथ हो रहा है वो हम बाबा के ऊपर सौंप दे रहे हैं, हमने बाबा से प्रार्थना किया बाबा हम आपके पास आ रहे हैं आप हमारे पास आ जाना, ये बच्चे भी आपका है ये सब कुछ आपका है, हम आपके पास आ रहे हैं आप हमारे पास आ जाना हमारे इन बच्चों को देखने के लिए।
आपको बच्चों की परेशानी थी?
हाँ। फिर हमने जाकर के साहब से बोले साहब हम बाबा के दरबार में जरूर जाएंगे एक बार, तो बोला साहब बोले जी आपके परेशानी दूर हो गए, हमने कहा हमारी परेशानी दूर हो या ना हो हमें बाबा पर विश्वास है हम बाबा के साथ चलेंगे, हमें मन में ठान लिए हैं तो जाएंगे ही जाएंगे, बाबा को बुलावा आ गया। इनके द्वारा एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको गुरु का जरूरत होता है, माँ बाप जो होते हैं जन्म देने के बाद सब कुछ यानी कि सिखाते हैं बच्चों को जो बच्चे को पता नहीं होते हैं
जी,
तो यही
तो
हमारे
बच्चे ठीक हो गया।
हाँ बच्चे ठीक है,
बच्चे ठीक है।
हाँ बच्चे
और अब यहाँ आ पाए।
हम यहाँ पे
और हर साल आएंगे।
हम दुआ तो इतने करते हैं भगवान बाबा से जी हमें हर साल बुलाए बाबा और हर साल थोड़ा सेवा करने का मौका दे, और हम तो जो भी कुछ भी है हम इनमें खुश हैं।
बहुत अच्छा, धन्यवाद।
धन्यवाद
साईराम बाबा, आपका नाम?
भगत पति।
भगत जी, आपको भी रिक्शा जल्दी ही मिलने वाला है श्री सत्य साई संगठन के तरफ से।
उनके दया हो तो।
दया होगी तो मिल जाएगा। आप यहाँ सेवा में आए?
हाँ सर।
कैसा चल रहा है?
ठीक है।
क्या काम कर रहे हैं?
ओ शिवालय में हम ड्यूटी कर रहे हैं।
ओ शिवालय में आपका ड्यूटी लगा, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था।
हाँ।
तो ये आपका पहली दफा दक्षिण भारत की ओर, कैसा चल रहा है?
ठीक।
ठीक से मतलब आपको यहाँ कुछ अलग लगा गाजियाबाद के एनवायरमेंट से? वातावरण में कुछ फर्क?
वातावरण तो अच्छा ही है और वहाँ मंदिर पे मेहनत भी है, मगर हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
मेहनत करके?
मेहनत करते हैं। हम श्रीवास्तव जी को वहां कहे थे या हमें जाएंगे तो हमारे बस को तो भारी उड़ी काम है नहीं, मगर ये भारी है काम, मगर हमें आप लग रहा हल्के हैं।
यहाँ कैसा हो गया?
उस सब उनका मेहर है, यानी हमारा ऐसा पापी लोग कौन आता है, कैसे आता, वो तो उनका मेहर था। श्रीवास्तव जी को हमारा इनके कोई वातावरण नहीं था,
लेन देन नहीं था, कुछ भी
लेन देन भी या वातावरण भी इससे नहीं था। इन लोगों के साथ में रहते थे, वहां गए, यहां आने को इनको सबको विचार हुआ, पूछे हम क्या चले जाएंगे। उनका था जो हमारे से पापी को बुलाना था, बुलवा लिए, आए तो बड़ी मन लग रहा है। अब आगे क्या करेंगे बाबा वो तो जानेंगे, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। वो जिसको नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा।
अब आप जब यहां से वापस जाएंगे, आप में क्या परिवर्तन होगा? कौन सी ऐसी बात है जो आप पहले करते थे जो आप नहीं करोगे? अब क्या बदलाव आएगा?
यहां जो हम आए हैं, इनके यहां को चलन लरन, लोग के बोल भाव, ये सब बहुत अच्छा लगा। जब तक बाबा को महिमा नहीं है तब तक लोग कितना मिठास आवाज कैसी।
तो इसका असर आप पे भी आ गया, आपका दिल छू गया।
अभी तो पूरा हृदय में बसे हुए हैं, आगा क्या होगा
उन्हीं पे छोड़ दीजिए,
हम क्या बताएं पहले।
बिल्कुल।
जो बाबा को बगैर तो हम आ नहीं सकते, क्यों हमारे पास न पैसे हैं न अधैर्य था। बाबा ने इनको मथा पर बैठे, इन्होंने वहां बोल रहे थे, पूछे जाओगे भगत जी, हम कहां जाएंगे जी, क्यों जब तक उन्हें बुलाते ये भी नहीं देते, नहीं कोई जान न पहचान, नहीं कभी इनको कोई हम एक गिलास पानी पिलाए, नहीं एक रुपये दिए लिए हम, ऐसी चलती है। उनका बुलावा था, उन्होंने इनको दिए, इन्होंने पूछे हम कहां चले जाएंगे जी,
हालांकि सब शुभ और मंगलमय हुआ,
सब उनका मेहर है।
फिर आएंगे अगले साल?
हम नहीं कह सकते हूं, सब उनका मेहर है,
स्वामी पे,
स्वामी का।
बाबी अगर बाबा बुलाएंगे तो खुद ही पहुंच जाएंगे।
बिल्कुल, उसमें कोई दूर आए।
तो अब आप जब वापस जाएंगे,
यदि हम इससे पूरे गिर जाएंगे, पेट में रोटियां नहीं रहेगा, बच्चे के बदन पर कपड़े नहीं रहेगा, हम उस फेस में नहीं आ सकते हैं, मुंह पर सामने कोई कह दिया हाँ, उधर बच्चे हमारा रो रहा है रोटी बगैर, हम कैसे यहां आ सकते हैं।
बिल्कुल,
वो तो सब उनका हाथ में है, जो मांगते हम आपको यहां आएंगे बहन जी या बेटा कह के या बेटी कह के
जी,
दो रोटी दे दो तो जरूर दोगे, हमारा क्या रहेगा, जो दो रोटी दिए थे कल आपको देखेंगे कहीं गिरा हुआ तो जरूर कम से कम उठा कर बैठा देंगे। जो बाबा फिर हमारा बुलाएंगे, जो हमें रोटी दिया उनका नाम तो आपको भी देगा जो हमें वो रोटी दी है। सबसे बड़ी बात वही है, हमारे मूर्ख का हम बिल्कुल अनपढ़ है, उठा छा जो रोटी दिया वही बाप।
इससे ज्यादा सीख की कोई जरूरत नहीं है, अगर इतना विश्वास है तो आप इस बात का कोई टेंशन मत लो कि आप अंगूठा छापो, जब दिल में विश्वास है भगवान के लिए तो बस इससे बड़ी विद्या कोई और नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। सायराम सुमित,
सायराम,
हमें अपना परिचय दीजिए और आप कहां से आए?
मेरा नाम सुमित है और मैं दिल्ली राजधानी के अमसरता विहार में रहता हूं।
अच्छा, आपका श्री सत्य साई संगठन से कैसे नाता जुड़ा?
ये कुछ अजीब सी बात है,
हमारे साथ शेयर कीजिए।
मतलब मैं इनको नहीं मानता था, मतलब
बाबा को जी। ये राजस्थानी कैंप क्या चीज है?
स्लम्स है।
स्लम्स है,
जैसे नाम दे देते हैं।
अच्छा, सरिता विहार के बगल में जो स्लम है।
हाँ,
अच्छा मैं समझ गई।
तो बाबा को मैं मानता नहीं था
जी,
मतलब सुना था नाम कि हाँ साईं है।
अच्छा,
तो मैं सीटरी वाले साईं बाबा को ज्यादा मानता था।
अच्छा,
बस मैं उन्हीं को मानता हूँ। और उसके बाद फिर चार तारीख को आना था यहाँ पे।
अच्छा,
तो ये बजाज आंटी हैं, सैटरडे को मतलब सैटरडे को वहां पे सत्संग हुआ, मतलब भजन। तो मेरी प्रसाद खाने की आदत थी।
अच्छा,
तो मैं प्रसाद खाने क्यू में चला गया। तो इन्होंने बुलाया मेरे को, ये मेरे को जानती थी मतलब फेस टू फेस। उन्होंने कहा कि सुमित तुम्हें चलना है। तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा हाँ मुझे चलना है। मैं यहाँ पे आ गया
फुटपर्ती, हालांकि आप बाबा को मानते भी नहीं है।
मानता भी नहीं, बस मैं साईं बाबा को दिल से मानता हूँ,
शिरडी बाबा को। हाँ। जी, हमारे लिए तो एक ही बात है, आप किसी को भी मानो, आप हमारे अपने ही हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे मन में कोई भेद नहीं है। मगर यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे।
आपकी उम्र क्या है सुमित?
21।
21 साल के? आप क्या पढ़ते?
फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन।
क्या पढ़ रहे हैं आप?
बीए।
बीए, अच्छा, कहाँ से, किस कॉलेज से?
देशबंधु कॉलेज।
देशबंधु, वो तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, फिर तो आप पढ़ाई में बहुत उत्तम होंगे, जो कि आपको वहां एडमिशन मिला है।
थोड़ा बहुत।
तो आप एक नौजवान है, दिल्ली से हैं, यहाँ के आपको सब वातावरण कैसा लग रहा है प्रशांति निलयम का?
बहुत, जिसे कहते हैं ना मतलब स्वर्ग, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिसिप्लिन, कानून जिस तरीके का है यहाँ पे, जिस तरीके से मतलब यहाँ के लोग हैं, जिस तरीके से चाल चलन है, बहुत बहुत अच्छा।
आपने देखा हमारे यहाँ शिरडी बाबा की रोज पूजा होती है मंदिर। हाँ। में हर जगह, जनरल हॉस्पिटल में,
यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ मतलब, एक आदत होती है ना कि मतलब नॉलेज क्या है क्या है।
हाँ।
तो मैंने सबसे पूछा, मतलब मेरी ड्यूटी रेसिडेंट में है, स्वामी रेसिडेंट में।
अच्छा, यजुर मंदिर में?
हाँ, यजुर मंदिर।
हाँ जी।
तो वहां पे जो दो तीन वो हैं, जैसे एक राजन है गोरखा, और मतलब एक अम्मा आती है रंगोली अम्मा, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ बाबा के बारे में। और जब मैं उनसे पूछता हूँ, जब वो बताती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं डेली एक ही बात पूछता हूँ कि बाबा कैसे थे, उसे कितने बार बात करते थे, ये सब पूछता था उनसे मतलब। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। और जैसे अब परसों में जाना है, तो जाने का मन नहीं कर रहा मेरा।
तो आप यहाँ के, यहाँ पे भी तो बाबा के भी तो कॉलेज है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हो?
पता नहीं था ना मुझे।
अच्छा,
मैं आपको बताता रहा हूँ, मुझे पता था इतना कि हाँ कोई है सत्य साई।
अब तो आपने खुद देख लिया, अपनी आंखों से अनुभव कर लिया, तो आगे मास्टर्स करना हो, कुछ पढ़ना हो, क्या आप यहाँ, यहाँ की यूनिवर्सिटी में आना चाहेंगे?
मौका मिलेगा तो।
यहाँ का वातावरण उतना पसंद आया?
बहुत अच्छा है। 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं आएगा, 4 बजे सब जग जाते हैं। और मेरी ड्यूटी 1 बजे से है, 1 बजे से 7, और फिर दोपहर में 1 बजे से 7।
अच्छा,
तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब 8 बजे सोऊंगा और 12 बजे जग जाऊंगा, और पता नहीं, और डेली और जग जाता हूँ,
लगता कोई आके जगा
देता है। जगा देता, हाँ,
ठीक समय से।
ठीक समय से, और जबकि मैं 15 मिनट आधा घंटा पहले पहुंचना होता है स्वामी रेसिडेंट।
आपको लगता है दोबारा मुड़ के आओगे यहाँ?
दोबारा की बात कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी लेट कर दिया आने में।
आप घर जाएंगे, घर में कौन कौन है आपके यहाँ?
मतलब हम 3 भाई हैं, पापा मम्मी।
पापा मम्मी को क्या बताओगे यहाँ के बारे में, कहाँ गया था, क्या करके आया? जयश्री आंटी मुझे निमंत्रण देके कहाँ लेके चली गई?
पापा को तो बस मैं जो बोलूंगा वो वहीं पे बोलूंगा। इतना बोलूंगा कि बस पापा कहेंगे पागल हो गया लगता है।
ठीक है, भगवान के पीछे पागल होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर पागल होना ही है तो भगवान के लिए हो जाओ, दुनिया पे क्या पागल होना। तो आपको लगता है आपने कोई परिवर्तन आया इस अनुभव से? जैसे कि
मेरी आदत थी 10 बजे सो के उठना, 2 बजे तक मतलब बात करना फोनों पे, चैट कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह, ये वो चैट करना। तो ये सब लगता है कि पहले कभी मैंने किया ही नहीं।
और जब आप फेसबुक और चैट करते हो तब लगता होगा कि मैं कैसे अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बगैर जिंदा रह सकता हूँ। यहाँ तो आप आराम से ठीक ठाक स्वस्थ नजर आ रहे हैं।
अच्छी तरीके से।
बहुत अच्छी तरीके से। वेरी नाइस, थैंक यू सुमित। आप कुछ और कहना चाहेंगे?
क्या बोलूं? मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। मैंने कई बार बजाज आंटी से ही बोला, मैंने कि मतलब मुझे लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो फिर वो बोलती, नहीं बेटा हमारी कोई वो नहीं है, ये तो बाबा ने तुम्हें चुना था आने के लिए यहाँ पे, और देखो तुम्हारी ड्यूटी भी स्वामी रेसिडेंट में लगी है।
ये तो आपका बहुत ही अच्छा, अच्छी किस्मत है कि इतना अच्छा सौभाग्य है कि आपको इतनी अच्छी पवित्र जगह में।
एक दिन पहले कोई प्लान नहीं।
और जबकि आप जानते नहीं थे, आपने बाल विकास अटेंड नहीं किया, तो मुझे लगता है अब आपके वहां सरिता विहार राजस्थान कैंप में जब भजन होगा, आप प्रसाद के अलावा भजन में भी शायद
आप
प्रसाद तो देंगे ही देंगे, मगर आप भजन भी अटेंड कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया,
धन्यवाद।
सायराम
सायराम डियर लिसनर्स, सो वेलकम बैक, एंड फ्रॉम द लास्ट पास 20 मिनट्स और सो, the conversations that you are listening to in Hindi were all about a unique and wonderful seva activity that the Sri Sathya Sai Seva organization of New Delhi have started. It's the Riksha project. So for the benefit of listeners who don't understand Hindi, let me just brief you about this project. So this project was envisioned by Mr. Sharad Srivastav. So what Mr. Sharad Srivastav thought was, like, we get loans from the bank for purchasing a house, a car, a bike or something like that. So Mr. Sharad Srivastav took loan from banks and bought rickshaws. Like generally in Delhi, there are rickshaw pullers who don't own the rickshaw. They drive the rickshaw for rent and earn money. So Mr. Sharad Srivastav bought rickshaws through loans from the bank, and he gave these rickshaws to the rickshaw pullers. And he made these rickshaw pullers own the rickshaw over a period of time by making them give back the amount of rickshaw to him through installments, but he didn't take any interest. So this way, the rickshaw pullers got an opportunity to own a rickshaw, that too with self-respect, like it was not donated to them. Over a period of time, they own the rickshaw. Another unique and wonderful thing about this project is that these rickshaws will be having a display of Swami's message, that is, love all, serve all, help ever, hurt never, and many more Swami's quotations. So these rickshaws keep going in the city and they get wide readership, and Swami's message is also spread in many places. So the project started on 25th July 2010 with the handing over of 5 rickshaws to the rickshaw pullers, and to impart dignity to their profession, they describe their occupation as transportation and not as rickshaw pulling, because they transport people. So till now, 43 rickshaws have been given to the beneficiaries. And from the past 20 minutes, we have been listening to the conversation with a few of the beneficiaries of this rickshaw project. So dear listeners, this is a segment, Service Love in Action. And today in this segment, I brought to you 2 Seva stories. So the second one was the Seva project of the rickshaw pullers, which the Sathya Sai Seva organization of New Delhi are organizing. In fact, in the first part of this segment, I had played for you a conversation with Mr. K. Sai Prasad and Mr. A. Vijay Kumar, in which they told us about a unique service project that they have started, that the Sri Sathya Sai Seva organization of the state of Tamil Nadu have started. It is called Seed Supply and Facilitating Project to the Farmers of Tamil Nadu. So this project is about, as you heard in the conversation, is about conducting seminars and distributing seeds to the farmers. And it's huge step, and it's a huge step towards agriculture development, as these seminars organized give the farmers an exposure to improved crop technology, more efficient farming practices, education about government studies available to them, and usage of less water. So dear listeners, the time right now in our studio is 12:40, and it's a fine afternoon here at Prashanila Ashram, and I place this segment at Bhagwan's lotus feet. So meet you again next Thursday, and I hand over the baton to Prem, who will take you through the next segment of today's Thursday Live, that is Afternoon Satsang. Jai Sairam.